हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 21 एंड 22। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए पवित्र हृदय और अविचलित बुद्धि एकाग्र मन के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकणरघुनाथ वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। परम सौभाग्य है जो हम सब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ने वाले हैं, जो कि अर्जुन बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक जो हमने श्लोक पढ़े वो संजय कह रहे थे धृतराष्ट्र को। और जब संजय ने धृतराष्ट्र को ये कहा कि जब सबके शंख बज गए उसके बाद, जैसे हमने कल पढ़ा श्लोक नंबर 20 में, कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हो गए, क्योंकि युद्ध स्टार्ट होने वाला था। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह हमें खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। और अब जो वचन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहे हैं, वह वचन हम अर्जुन के शब्दों में सुनेंगे। इसे आज वेदव्यास जी ने पहला वर्ड जो लिखा है श्लोक के ऊपर, वो लिखा है अर्जुन उवाच, अर्थात अब अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन के परम, अर्जुन जो के भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र और परम भक्त भी थे, अब भगवान से भक्त की वार्तालाप होने वाली है। और अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान को, चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 21 एंड 22। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धु कामानवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। शब्दों का अर्थ देखिए। सेन अर्जुन उवाच, अर्जुन, अर्जुन का क्या मतलब है पता है? यहाँ पर तो लिखा अर्जुन ने कहा, लेकिन अर्जुन का मतलब होता है जो बहुत सरल हो, यानी कि जो जिसकी हृदय में कपट ना हो, जिसके हृदय में कोई डबल पॉलिसी ना हो, कुछ ऐसा नहीं हो, द्वेष नहीं हो, कपट नहीं हो, एकदम सरल हृदय, जिसका एकदम सही सत्य को ग्रहण करने के लिए एकदम सही हृदय जो है। तो ऐसा जब हमारा हृदय होगा ना, तो उसी में ऐसा कहा जाता है, देखो जब हम कोई जमीन पे बीज बोते हैं ना, अब ये जैसे जमीन है ना, हमारे घर में ऐसा होता है कि मार्बल की जमीन होती है, कड़क होती है ना, वो बहुत टाइट होती है, या सीमेंट की होती है, उस पे हम कभी भी बीज नहीं बो सकते। कोई भी बीज बोने के लिए हमें जमीन, नरम जमीन चाहिए ना, एकदम सॉफ्ट हो, सरल हो, जैसे मिट्टी हो और नरम जमीन चाहिए होती है ना, उसी तरह भक्ति का बीज बोने के लिए भी हमें एकदम नरम जमीन चाहिए होती है। जब तक हृदय कोमल नहीं होता है, जब तक हृदय नरम नहीं होता है, तब तक हम उसके अंदर भक्ति का बीज नहीं बो सकते। और हृदय नरम कैसे होता है, हृदय कोमल कैसे होता है, जब हृदय शुद्ध होता है। और हृदय शुद्ध कैसे होता है, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम। हृदय की पवित्रता के लिए आपको क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो हम चाहे कितना भी सुन लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितनी ही क्लासेस अटेंड कर लें, यदि हमारे हृदय की जो जमीन है वो सॉफ्ट नहीं है, तो उसमें भक्ति का बीज नहीं बोया जा सकता। इसलिए हमें श्रवण के साथ साथ जप अवश्य करना चाहिए। भगवान के नाम का जप अगर नहीं करेंगे तो हम उसे कभी भी ग्रहण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा हृदय इतना कठोर है, अब भगवान की कथा सुनने का मन नहीं है, बस अगर सुन भी रहे हैं तो भी उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनके वचनों को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसका मतलब यही है कि हमारा हृदय बहुत कठोर है। तो इस कठोर हृदय को भगवान के शब्दामृत से हमें पहले नरम करना है। इसलिए अर्जुन कहा गया अर्जुन उवाच, क्योंकि अर्जुन का हृदय, अर्जुन का मतलब ही है जो बहुत सरल हो, जो बहुत नरम हृदय, यानी ऐसा हृदय जो भक्ति का बीज बोने के लिए एकदम सही कैंडिडेट, एकदम सही पात्र हो, वो है ना अर्जुन। तो वो अर्जुन मानी वो बिल्कुल सरल होना चाहिए। तो हम भी यदि चाहते हैं कि आज से, क्योंकि अर्जुन के श्लोक स्टार्ट है, अब अर्जुन जो कहेंगे उसके आंसर में भगवान जो कहेंगे, ये सब हमारे जीवन में हमें उतारने के लिए, तो उसको उतारने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने हृदय को कोमल बनाना है भगवान के पवित्र नाम के द्वारा। आगे है सेनयो, सेनयो मतलब सेनाओं के, उभयो उभयो बोलते दोनों को, दोनों यानी कौरों की सेना और पांडवों की सेना, दोनों सेनाओं के मध्य, मध्य माना बीच में। रथम, रथ को स्थापया, कृपया खड़ा कीजिए। भगवान को कह रहे हैं कृपया मेरे सेना को, दोनों मेरे रथ को दोनों सेनाओं के सेंटर में खड़ा कीजिए। मैं माना मेरे अच्युत। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर नाम दिया है अर्जुन ने, अच्युत। अच्युत का मतलब क्या होता है? अच्युत का मतलब होता है कि वह भगवान जो भगवान होकर भी अपने भक्तों की सेवा करने में कभी संकोच नहीं करता। अच्युत का मतलब होता है वह कृष्ण जिसे कभी कोई च्युत नहीं, जिसे कभी कोई गलती नहीं होती, जिसे कभी कोई मिस्टेक होना पॉसिबल नहीं है, वह भगवान जिसकी शरण में चले जाएं तो फिर हमारी कभी भी हमारे सारे अपराध क्षय हो जाते हैं और कभी भी हमारा पतन होना पॉसिबल नहीं। एक बार जो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसकी विजय निश्चित है। अच्युत का मतलब होता है कृष्ण की शरण में यदि हम चले जाते हैं, जो चला जाता है, जो भक्त भगवान, वह भगवान जिसकी शरण में जो चला जाता है, वो भले कितना ही पापी क्यों न हो, उसे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है, उसके समस्त पापों का खंडन हो जाता है। ऐसे भगवान को पहला ही संबोधन दिया अर्जुन ने, माया अच्युत के, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के सेंटर में खड़ा कर दीजिए। क्योंकि भगवान को अच्युत कह रहे हैं क्योंकि गलती तो होने वाली नहीं आपसे, इसलिए मुझे सेंटर में खड़ा कर दीजिए। क्या क्यों क्या चाहता हूँ मैं? यावत यानी जब तक, एतान इन सब निरीक्षे हम, अक्षय कहते आंख से, माना मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। युद्ध कामान, किसको? जो युद्ध मतलब युद्ध के कामान मतलब इच्छा रखने वाले, जो युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। अवस्थितान युद्ध भूमि में अवस्थित हो गए, एकत्रित हो गए हैं। यानी अर्जुन को बोला, हे अर्जुन ने बोला, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेंटर, दोनों की सेंटर में रख दो, दोनों सेनाओं के सेंटर में रख दो, ताकि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो युद्ध की इच्छा से यहाँ पर आए हैं। कैर मया, कैर मया मना किन किन लोगों से, किन मया मना मेरे द्वारा किन किन लोगों से, सह योद्धव, सह मतलब एक साथ, योद्धव्यम मतलब युद्ध किया जाना है, अस्मिन, अस्मिन का मतलब होता है इस, यानी प्रेजेंट जो अभी युद्ध होने वाला है, इस रण यानी रण में या संघर्ष में या झगड़े में, समुद्य में, उद्यम या प्रयास। यानी अनुवाद देखिए, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। बहुत ही सुंदर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से शब्द कहे हैं कि मैं वो उनको देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए हैं। श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए।
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमीच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे।
फिर से,
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमीच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योधुकामानवस्थितम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमि।
अर्जुन बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि ये जो दोनों सेनाएं हैं जिन जिनसे मुझे संघर्ष करना है, और जब इन दोनों सेनाओं में से मतलब मैं जीत जाऊंगा तो फिर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। इसलिए पहले मैं इन दोनों सेनाओं के सारे मेंबर्स को देखना चाहता हूं जिनके साथ मुझे युद्ध करना। युद्ध का मतलब होता है कि मुझे अब अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय था, उसका नियत कर्म युद्ध करना था, उसका कर्तव्य था युद्ध करना। वो अपने कर्तव्य को पालन करने से पहले उनको देखना चाहता है जिसके साथ उसे कर्तव्य पालन करना है। तो यह हम सबका प्रश्न होना चाहिए, हमें अपने जीवन के रथ की दौड़ भगवान श्री कृष्ण को दे देनी चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण को यही कहना चाहिए कि हमारे रथ को दोनों के सेंटर में कर दो। दोनों की क्या, देखो हमारे पास भी दो ही हैं, भगवान की दो शक्तियां मैंने बताई ना आपको, एक अंतरंगा शक्ति है और एक बहिरंगा शक्ति है, एक भौतिक शक्ति है और एक आध्यात्मिक शक्ति है। कृष्ण इन दोनों के सेंटर में खड़ा कर दो और देखो रथ तुम्हें चलाना है। मैं भले सारथी हूं, हरे कृष्णा, मैं भले उस रथ में विराजमान होकर महारथी का कार्य करूंगा, लेकिन मेरा रथ उसकी डोर आप पकड़ लीजिए और दोनों सेनाओं के सेंटर में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि किन किन के साथ मुझे अपना कर्म करना है, माया क्या है और आध्यात्मिकता क्या है। कृष्ण जब हमारे इस रथ को चलाएंगे और कृष्ण जब उस रथ को चलाएंगे जिस रथ के सारथी कृष्ण होंगे, वह रथ अवश्य एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो हमें पढ़ना चाहिए, हमें इसी भाव से भगवद गीता के श्लोकों को उच्चारण करना चाहिए कि मैं भगवान को कह रहा हूँ। ऐसा है कि ये गीता जो है ना वो हम सबके लिए है, इसके प्रश्न भी हम सबके लिए हैं, इसके उत्तर भी हम सबके लिए हैं, हमें अपने जीवन पर लागू करना चाहिए ने? जब हम बोलेंगे ना, अब हमारे मेरे साथ बोलो श्लोक उच्चारण करो एक बार फिर।
सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापयमीच्युत यावदेता निरीक्षेहम् योद्धुकामानवस्थितम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे।
श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं यद्यपि कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेना सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी चूकते नहीं हैं, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। यानी कितनी कृपा है कृष्ण की, वो साक्षात भगवान है। भगवान का मतलब है वो ईश्वर है, लेकिन कितनी कृपा है वो ईश्वर होते हुए भी अपने भक्त की सेवा करने में कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वो अर्जुन की आज्ञा को पालन करेंगे। अर्जुन ने बोला है ना कि सेंटर में खड़ा करो, तो अर्जुन बोलेंगे जो आज्ञा, कृष्ण बोलेंगे जो आज्ञा मैं खड़ा कर रहा हूँ। यानी कृष्ण अब अर्जुन के सारथी हैं। भगवान को किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि वो उस प्रेम के कारण भक्तों के सारथी, भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इवन भक्तों की तो ठीक है, लेकिन ना जो भगवान के भक्त नहीं होते वो भी यदि भगवान से सहायता मांगने जाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण सहायता अवश्य करते हैं। आपको याद है अभी तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है ना कि अर्जुन के सारथी बने कृष्ण। कैसे बने? क्योंकि जब भगवान द्वारिका में थे और युद्ध निश्चित हो गया ना कि युद्ध होने वाला है, तो भगवान ने कहा कि जो भी मेरे पास सहायता के लिए आएगा। अब दोनों सेनाएं थी, दोनों भगवान के रिलेटिव, लेकिन है ना अर्जुन तो भगवान की बुआ का बेटा था, कुंती का बेटा था, लेकिन गांधारी को भी भगवान श्री कृष्ण उतना ही स्नेह देते थे जितना कि अपनी बुआ कुंती को देते थे। तो भगवान ने कह दिया कि जो भी मेरे पास सहायता लेने के लिए आएगा मैं अवश्य उसकी सहायता करूंगा। अब क्या हुआ, भगवान ने पहले ये बोला कि जो पहले आएगा ना मैं उसकी सहायता करूंगा, जो पहले आएगा वो जो भी डिमांड करेगा वो मैं उसकी पूरी करूंगा। अब फिर क्या हुआ, भगवान अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, भगवान की मतलब रेस्ट कर रहे थे, अपने बेड पर लेटे हुए थे और आंखें भगवान की बंद थी, नेत्र मूंद करके बैठे थे। तो पहले दुर्योधन ने जब ये सुना कि भगवान उसकी सहायता करेंगे, उसकी डिमांड पूरी करेंगे जो पहले आएगा, तो फौरन से चले गए दुर्योधन। और दुर्योधन जब गए तो देखा कि भगवान की आंखें बंद थी, सोए हुए थे भगवान, तो फिर है ना वो भगवान के सरहाने लेट गए, यानी जहां भगवान का सिर रखा हुआ था ना उस तरफ भगवान के सिर के पास बैठ गए। और उसके बाद अर्जुन को भी जाना था क्योंकि अर्जुन भगवान से मिले या फिर सहायता लिए बगैर कैसे जा सकते थे, और अर्जुन को पता था कि भगवान मतलब ये तो सबने सुन लिया था, जो पहले जाएगा उसकी भगवान पहले डिमांड पूरी करेंगे। अब अर्जुन बाद में गए, लेकिन बाद में गए तभी भी वही कंडीशन थी, भगवान सो रहे थे। तो अर्जुन ने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों के पास बैठ गए, चरणों के पास बैठकर भगवान की उठने की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही कृष्ण की आंखें खुली तो सामने देखा कौन था, अर्जुन था, क्योंकि दुर्योधन तो सिर के पास पीछे बैठे हुए थे। और सामने जब हम आंखें खोलते हैं तो जो फ्रंट पे बैठा होता है हमें वो नजर आता है ना, तो अर्जुन नजर आया। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कहो पार्थ क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहते हो? तो फिर ना अर्जुन ने कहा, माधव मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, और क्या चाहिए? तो फिर ना दुर्योधन ने कहा, देखो कृष्ण पहले मैं आया था और आपका यह प्रण था कि जो पहले आएगा मैं उसकी डिमांड पूरी करूंगा, उसकी उसकी बात मानूंगा। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है आप पहले आए होंगे, बट पहले तो मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तो पहले अर्जुन को मौका दूंगा कि वो पहले मांगे। तो दुर्योधन ने कहा, आपने इसको देखा तो इसमें क्या कर सकते, आया तो पहले मैं हूं ना। तो बोला, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। कृष्ण ने बोला, देखा तो मैंने ना अर्जुन को था, इसलिए मैं पहले अर्जुन को बोलूंगा कि वो जो भी बोले। तो फिर है ना अर्जुन ने कहा, नहीं माधव, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ये पक्षपात हो जाएगा, कि ना देखो अर्जुन की साइड ली उसने, आप भले क्योंकि दुर्योधन पहले आया था तो भले आप है ना उसकी बात पहले मानो। तो कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन कितना कैसा स्नेह, अगर तुम वो पहले आया होता तो तुम ऐसा कहते, तो फिर और जबकि मैंने तुम्हें पहले देखा होता। तो दुर्योधन ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान ने कहा, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान का शस्त्र क्या है पता है? भगवान का शस्त्र है सुदर्शन चक्र। और अगर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाते हैं इस युद्ध में, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता ना। एक सुदर्शन चक्र से संपूर्ण सेना की गर्दन काट के एक सेकंड में युद्ध को खत्म कर देते भगवान। लेकिन भगवान ने यह प्रण किया कि इस युद्ध में वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब बोला कि देखो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक साइड पर मैं हूँ निहत्ता, मतलब मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और दूसरी साइड पर है मेरी नारायणी सेना, यानी कि इतनी बड़ी सेना है और एक एक उस सेना का एक एक महारथी बहुत ज्यादा उसके पास युद्ध कला, बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा शक्तिमान और बहुत सारी एक अक्षय सेवा सेना भगवान की थी, तो इतनी बड़ी सेना एक साइड पर भगवान ने रखी और एक साइड पर स्वयं खुद को रखा। अब बोले चॉइस करो, पहले दुर्योधन तुम्हें चॉइस देता हूँ, तो आपको क्या चाहिए? तो फिर है ना दुर्योधन ने कहा अब ये कृष्ण अकेला है, उसके हाथ में शस्त्र भी नहीं है, तो फिर है ना मैं इस अकेले का क्या करूं? तो है ना बोला कि मुझे सेना चाहिए, नारायणी सेना में ले लेता हूँ। और अर्जुन ने कहा कृष्ण आप मुझे चाहिए हो, आपके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भले आप शस्त्र उठा रहे हो नहीं उठा रहे हो, आप युद्ध कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप खाली मेरा साथ दो, आप अगर मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला और दुर्योधन को नारायणी सेना, दोनों खुश हो गए थे। और अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दी कि कृष्ण अब क्योंकि आप मेरे पास हो और मुझे आप रथ भले युद्ध ना करो, भले शस्त्र ना उठाओ, लेकिन मेरे सारथी बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्नेह के कारण भगवान ने उनका सारथी बनना स्वीकार किया। पता है क्या होता है, जब सारथी होता है ना, जब युद्ध कितना तेज चल रहा होता है, सब लोग तीर बरसा रहे होते हैं, तो बात करने का समय नहीं होता है। फिर जो महारथी होता है ना, वो क्या करता है, फुट से अपने पांव से इशारा करता है कि इस तरफ से चलना है, उस तरफ से चलना है, ऐसे फुट से टच करके उसको बोलते। तो कई बार ऐसा होता था कि अर्जुन भी ऐसे भगवान को बोलते थे इशारे से, क्योंकि इतना फास्ट युद्ध चल रहा होता है तो बात करने के ऐसे बार बार रिक्वेस्ट करने का समय नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की करुणा है कि वो भक्त के हर बात को हर इशारे को समझकर उसकी है ना पूरा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसी समय भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठवा के छोड़ूंगा, मैं जरूर ऐसा भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शस्त्र उठवाऊंगा। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि भीष्म की यह प्रतिज्ञा है कि वो मुझे शस्त्र उठवाएंगे, तो फिर क्या हुआ, भीष्म पितामह क्या करते थे, एक दिन में हजारों सैनिक, 10,000 सैनिक जो है वो मारते थे, और ना बहुत एक बार बहुत ज्यादा युद्ध कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अर्जुन ने ना वो उनके साथ सही तरह से युद्ध, क्योंकि उनके पितामह थे, बहुत स्नेह था, तो सही युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो अर्जुन को बोला नहीं हो रहा तुमसे युद्ध, तो रहने दो मैं करता हूँ युद्ध। तो एक टूटे हुए रथ का एक पहिया उठाया भगवान श्री कृष्ण ने और दौड़े भीष्म पितामह के सामने, दौड़ रहे हैं, इतना धरती और आकाश कांप गए, लरस गए कि भगवान ने जब प्रतिज्ञा ली है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस पहिये को उठाकर जैसे सुदर्शन चक्र को घुमाते ना, ऐसे उस पहिये को घुमा के भीष्म पितामह के पास लेकर जा रहे थे। और उसी टाइम पर धरती कांपने लगी कि यदि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली तो प्रलय आ जाएगा। फिर लेकिन उसी टाइम पर भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर जो है वो फर्श पे धरती पे गिरा दिया और धरती को ये सहत्वना दी कि नहीं, आप धरती मैया आपको है ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रलय नहीं लाऊंगा, अभी प्रलय का समय नहीं है, ये तो मेरे भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली। भगवान का ये भगवान की प्रतिज्ञा थी ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उठवाऊंगा ऐसे शस्त्र, तो भगवान क्या करते हैं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। यदि भगवान का भक्त कोई बात कर देता है, कोई किसी को वचन दे देता है, कुछ कर देता है कि हाँ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी सहायता करेंगे, फिर भले भगवान की प्रतिज्ञा टूटती है तो टूटे, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा टूटने वो कभी नहीं देते हैं। और फिर उसी समय अर्जुन उतरे अपने रथ से और भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि माधव आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी प्रतिज्ञा मैं तोड़ने नहीं दूंगा। और फिर भगवान ने वह पहिया रख दिया और फिर वापस से अर्जुन ने युद्ध किया। तो ये कृष्ण की करुणा है कि अपने भक्तों के स्नेह के कारण वो ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। यानी कि भले वो सारथी बन गए थे, लेकिन हैं वो भगवान, उनकी परम स्थिति जो है वो तो वैसी की वैसी बनी रही, लेकिन क्योंकि वो प्रेम करते हैं अपने भक्तों के साथ, इसलिए वो इस तरह के कार्य करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश हैं। भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश ही हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत सुंदर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त के लिए कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसे कहते हैं प्रेम का आदान प्रदान। भगवान जो भक्त सदैव भगवान की सेवा करते रहते हैं, वो भगवान को हमेशा इच्छा होती है कि वो कुछ मुझसे कहें तो मैं उनकी बात को पूरा करूं, कुछ मुझसे मांगे तो मैं उनको दूं। कृष्ण हमेशा इसको बोलते प्रेम। प्रेम एक साइडेड नहीं है। भगवान का प्रेम जो होता है ना, वो दो साइडेड होता है। हमें क्या नजर आता है कि भक्त देखो कितनी सेवा कर रहा होता है, लेकिन साथ में भगवान भी कंटिन्यूस उनकी सेवा कर रहे होते हैं और भगवान को बहुत खुशी होती है जब वो भक्त के लिए कुछ करते हैं। भगवान का, जैसे मैंने आपको उस दिन एक स्टोरी सुनाई थी ना कि बिहारी जी उसको दिखाई नहीं देते थे। एक भक्त था जिसको बिहारी जी दिखाई नहीं देते थे, ज्योति खाली दिखाई देती थी। तो फिर ना बिहारी जी ने कहा, जब दूसरे दिन एक कोड़ी ने बोला कि मुझे आप बिहारी जी को बोलो कि मुझे ना कोड़ ठीक कर दे, तो जब उसने जाके कहा तो बिहारी जी फिर उसके सामने आ गए। भक्त ने कहा पहले अभी तक क्यों नहीं दर्शन देते थे, तो बोला क्या मुँह लेकर आता तुम्हारे सामने, तुमने तो है ना कुछ कभी मांगा ही नहीं। मेरा दिल कर रहा था कि मुझसे तुम कहो, तुम कुछ अपने हृदय की बात शेयर करो। में तो इसलिए हमें भगवान से सदैव कृपा की याचना करनी चाहिए कि भगवान हम नहीं रह सकते, आपकी कृपा के बगैर हम इस संसार में नहीं रहना चाहते हैं, आप हम पर कृपा करो ताकि हम इस संसार के दुखों से छूटकर आपकी शरण में आ सके। नहीं होता है हमसे अच्छा जब भगवान के पवित्र नाम में कोई आकर्षण नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई प्रेम नहीं। आप कुछ करो ना हमारे लिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसी प्रार्थनाओं से और उन्हें आशीर्वाद देकर। तो है ना, हमें दूसरे भक्तों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जिनका जप नहीं हो रहा है, जिनकी सेवा सही नहीं हो रही है, तो भगवान हमारी बात को देखते, जब देखते हैं कि कितना वो शुद्ध हृदय से दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है और भक्ति में उन्नति चाहता है, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि वो ऋषिकेश हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी इंद्रियों में सारे आते हैं, मन भी आता है, तो उनको कंट्रोल करते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध बहुत ही मधुर है। यानी कि भगवान की क्या मधुरता क्या है, सेवक हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान हमेशा अपने सेवक की से अपने भक्त के लिए कुछ न कुछ करके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि स्वयं आज्ञादाता ना बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने भक्त को आज्ञा दूं कि ये करो ये करो ये करो, बल्कि उन्हें क्या अच्छा लगता है कि मेरा भक्त मुझे आज्ञा दे कि कृष्णा आप ऐसा करो, कृष्ण ऐसा करो ना, सबके हृदयों को पवित्र कर दो, इन सबके हृदयों को इतना नर्म कर दो कि इनमें भक्ति का बीज बोया जा सके। जब ऐसी प्रार्थना शुद्ध भक्त अपने हृदय से, क्योंकि भक्त जब मांगता है, अब यहाँ पर देखो ये सोचने की बात है कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि वे चूंकि स्वामी है अतः सब, ऐसा लिखा हुआ है कि वे ऐसा सोचते हैं, भगवान क्या सोचते हैं कि मैं खुद नहीं खुद आज्ञादाता नहीं बनो बल्कि शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। अब यहाँ पर ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भौतिकतावादी मनुष्य, शुद्ध भक्त को हमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि शुद्ध भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान मुझे खाना दे दो, कपड़े दे दो, मुझे ऐसा घर दे दो, गाड़ी दे दो, ये शुद्ध भक्त की इच्छा होती ही नहीं है। शुद्ध भक्त की केवल एक ही इच्छा होती है कि मैं स्वयं कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं और दूसरों को भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने में सहायता करूं। बस ये इच्छा होती है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो इस भौतिक संसार से के कष्टों से का निवारण करके मेरे पास, इसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को 9.31 के ना, दुखालयम अशाश्वतम इमं प्राप्य भजस्वमाम, के इस संसार, क्योंकि ये दुखों से भरा हुआ है, इसमें आकर आपको मेरा भजन करना चाहिए। भगवान की इच्छा है, और भक्त की क्या इच्छा होती है कि मैं भी भगवान की इच्छा को पूरा करूं और जो दूसरे लोग हैं उनसे भी भगवान की इच्छा को पूर्ण करवाऊं। तो इसीलिए यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद ने कितना सुंदर लिखा है कि सभी लोग उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ऊपर उनकी आज्ञा देने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान क्या सोचते हैं कि वो स्वयं आज्ञादाता ना बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। शुद्ध भक्त जब आज्ञा देते हैं तो क्या आज्ञा देते हैं, भगवान कृपया सबको आप भक्ति करने का मौका दो। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिर भी वो अच्युत हैं। और ना जो भी परिस्थिति होती है, चाहे वो आज्ञा पालन भी कर रहे हैं तो भी वह भगवान ही है, ऐसा नहीं कि वो भगवान की स्थिति उनकी चेंज हो गई। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधुओं से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि भगवान के भक्त को ये सब इच्छा होती नहीं है। तो जब इच्छा नहीं थी, इससे साबित होता है कि वो भगवान का भक्त था, वरना तो फिर युद्ध इस स्थिति में किसको इच्छा नहीं होगी। यहाँ पर हमारे घर में हमारे सामने छोटा सा भी कोई हमारे साथ झगड़ा होता है, तो जब झगड़ा स्टार्ट हो रहा होता है तो दोनों कितना खून बॉयल हो रहा होता है दोनों का, कि बस किसी भी तरह से मैं उसको ठीक करूंगा, उसके बाद है ना मुझे सुख आएगा। लेकिन अर्जुन इस स्थिति में जब युद्ध घोषित हो चुका था, जब संधि का कोई प्रश्न नहीं रह गया था, और इस टाइम पर जब शंख बज गए थे तो उठाता ना तीर और मारता, दोनों शुरू कर देता, तीरों को बरसाना शुरू कर देता और अभी इतने सारे सैनिकों, इतने सारे महारथियों का वध कर देता, लेकिन उसकी इच्छा नहीं हो रही थी युद्ध करने की। इसलिए भगवान को बोला कि नहीं, अब पहले मुझे देखने तो दो कि कौन कौन है जिनसे मुझे युद्ध करना है। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठ धर्मता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा था, यानी कि वो खुद नहीं चाहता था लेकिन दुर्योधन ने इतनी हठधर्मी की थी कि आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता है तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यानी कि अब तो कोई भी शांति का प्रस्ताव है ही नहीं, शांति प्रयास होगा ही नहीं, क्योंकि जितना शांति की कोशिश कर सकते थे उन्होंने की। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए और अर्जुन और पांडवों के लिए उनका राज्य ना चाहकर सिर्फ 5 गांवों की मांग की, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने कहा कि मैं नहीं दूंगा कुछ भी। अब तो इस समय जब युद्ध अनिवार्य हो गया था तो शांति तो पॉसिबल ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था कि कौन है जिनके साथ मुझे लड़ाई करनी है, इस अवांछित युद्ध में किस हद तक वो लड़ने के लिए तैयार है। आगे अर्जुन कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 23, योच्यमानन वीक्षेहम् य एते अत्र समागताः
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः।
फिर से पढ़िए।
योत्स्यमानन वीक्षेहम् य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः।
वन्स् मोर्।
योत्स्यमानन वीक्षेहम् य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः।
शब्दों का अर्थ देखिए। योत्स्यमानन यानी युद्ध करने वालों को वेक्षेहम, मैंने बोला था ना अक्ष का मतलब होता है आंख, यानी वेक्षे मतलब देखना चाहता हूँ। अहम में यो ये एते यानी जो वे अत्र समागता, अत्र मना यहाँ पर, समागता मना एकत्रित हुए, यानी यहाँ जो इस युद्ध भूमि में एकत्रित हुए मैं उनको देखना चाहता हूँ। धार्तराष्ट्रस्य यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को दुर्बुद्धे, यहाँ पर एक शब्द उच्चारण किया, उनकी बुद्धि बहुत खराब है, बहुत खराब बुद्धि थी, उन लोगों ने बहुत हमारे साथ खराब काम किया, इतनी खराब बुद्धि थी कि वो आपकी बात को भी नहीं माने, इसलिए उन सारे दुर्बुद्धि लोगों को युद्धे प्रिय, युद्धे मना युद्ध में, प्रिय मतलब मंगल भला, चिकीर्षवा चाहने वाले, क्योंकि दुर्योधन इत्यादि जो धृतराष्ट्र के बेटे थे उनकी उनकी बुद्धि इतनी खराब थी, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो इन दुर्बुद्धि वालों का साथ देने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका साथ देने के लिए इस युद्ध में खड़े, उनका साथ दे रहे हैं, मैं उनको देखना चाह रहा हूँ। अनुवाद देखिए। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से बताएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांडगांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। श्री प्रभुपाद जी बोलते सबको खबर थी कि दुर्योधन के पास कितनी दुर्बुद्धि है, वो कितने गलत कार्य कर रहा है और पांडवों का राज्य है उसको हड़पना चाह रहा था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान अधर्मी रहे होंगे, क्योंकि अब इतने अधर्मी का साथ जो दे रहे हैं। देखो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें यहाँ सावधान कर रहे हैं कि आप चाहे कितने ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन यदि आप किसी अधर्मी का साथ दे रहे हो तो आप भी अधर्मी कहलाओगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्ण यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी, खाली ये देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जो जो दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि मनुष्य का साथ देने के लिए आए हैं, आखिर वो कौन से, सिर्फ वो देखना चाहता था, समझौता नहीं करना चाहता था। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाहता था, यानी कि वो देखना चाहता था कि कौन कौन है, उनकी कितनी शक्ति है मुझे पता चल जाए। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। श्री प्रभुपाद जी आज फिर बता रहे हैं कि अर्जुन को ये तो पता था कि जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि जहां पर कृष्ण है जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना, जय विजय तो केवल पांडव पुत्रों की ही होगी क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन है, भगवान श्री कृष्ण है, तो डेफिनेटली विजय तो उनकी ही होनी है। तो अर्जुन को विश्वास भी था लेकिन वो देखना चाहता था कि लड़ाई से पहले कम से कम मैं देख लूं कि कौन कौन उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं और उनकी शक्ति कितनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल।